आप हैं SBS हिंदी के साथ।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पृथ्वी की कई प्रतिष्ठित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए हमारे व्यवहार को बदलने का आग्रह किया गया है। प्रजाति की हानि दर अतीत की तुलना में दसियों या सैकड़ों गुना तेज है। तो अब इसी पर एक रिपोर्ट। मानव इतिहास में किसी भी समय की तुलना में प्रकृति इस समय बहुत अधिक संकट में है। पौधों और जानवरों की 1 मिलियन से भी अधिक प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। ये निष्कर्ष है मई 2019 में जारी जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की पहली व्यापक रिपोर्ट का। रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि पर 0.5 मिलियन से भी अधिक प्रजातियों के लिए आगे लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपर्याप्त निवास स्थान है और इनमें से कईयों की आगे आते दशकों में विलुप्त होने की संभावना है। क्वाला, गैंडे, हाथी और कई अनेक जानवरों की प्रजातियां खतरे में हैं, लेकिन कुछ संगठन जो कि अक्सर चिड़ियाघरों में स्थित हैं, इन प्रतिष्ठित जानवरों को संरक्षित करने की कोशिश के लिए परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। सोफी वाइन्स ब्रिटेन के विस्पलैंड जू में हाथी व्यवहार और थर्मल इमेजिंग रिसर्च ग्रुप की प्रमुख हैं। वो एशियाई हाथियों को पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का उपयोग करके हाथियों को मनुष्यों से बचाने के लिए एक परियोजना पर काम कर रही हैं।
We are using thermal imaging technology and machine learning to create a early warning system which will be deployed in local communities where human elephant wildlife conflict is a major issue.
इसका उद्देश्य मानव हाथी मुठभेड़ों को कम करना है, जो अक्सर हाथियों और मनुष्यों द्वारा प्रतिशोध या डर में मनुष्यों या एक दूसरे को घायल करने के कारण होता है। बुशफायर संकट ने ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित ग्वाला के बारे में संरक्षणवादियों द्वारा व्यक्त किए गए गंभीर संदेह को उजागर किया है। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में हजारों ग्वाला मारे गए हैं। क्वाला पहले से ही इन राज्यों के साथ साथ ACT में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं और इनकी और अधिक मृत्यु ना हो, नुकसान ना हो, इसे रोकने की तरफ ध्यान दिया गया है। साइंस फॉर वाइल्ड लाइफ के कार्यकारी निदेशक डॉ. केली ले का कहना है कि कोई भी मानकीकृत प्रोटोकॉल नहीं है जिससे कुछ भी करना मुश्किल हो रहा है और अब तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है।
I think the main call to action that we'd like to see is more resources and more planning. At the moment, so many people want to help and we've just got no way forward. We don't have protocols in place to go in before or after fire to try and get koalas out or to go and rescue them. There's no standardized protocols, which is making it really difficult to try and do anything. We also are very under-resourced for wildlife care as well.
खतरे के तहत एक और ऑस्ट्रेलियन प्राकृतिक आइकन जिसे दुनिया भर में ध्यान मिला है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। मूंगा यानी कोरल, जिससे रीफ बनती है, जब पानी का तापमान बढ़ता है तो मूंगा ब्लीचिंग से पीड़ित होता है। अब ये एक इशारा है मूंगा के जंतु यानी कोरल पॉलिप्स खुद खतरे में हैं और मर सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी ने ग्रेट बैरियर रीफ के दोबारा आंकलन के बाद इसके आउटलुक को खराब से बहुत खराब तक डाउनग्रेड किया है। अध्यक्ष डॉक्टर इयन पॉइंटर कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन तो सिर्फ एक खतरा है जो रीफ को है, इसके अलावा स्थानीय और क्षेत्रीय खतरे भी हैं।
Coral reefs globally are declining, including the Great Barrier Reef, and we know why. It's very clear why, and the reason is climate change impacts. And climate change impacts that require a global response. However, there are also a local and regional threats, such as runoff from the land, coral-eating crown-of-thorns starfish, and some of the practices, practices on the reef that need some management.
लेकिन सफलता की भी कहानियाँ हैं, जैसे कि ईस्टर्न बार्ड बैंडिकूट ऑस्ट्रेलिया के सबसे लुप्त प्राय जानवरों में से एक है जिसे शिकारियों ने लगभग मिटा सा दिया था, लेकिन विक्टोरिया में एक विशेष परियोजना इस जानवर को बचाने में मदद कर रही है। मेलबर्न के पश्चिम में माउंट रॉथवेल में एक नई परियोजना के तहत बैंडिकूट सेंचुरीज बनाई जा रही हैं। एनेट राइपल्स की ओटोनाडा में बायोडायवर्सिटी डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया,
We've been captive breeding bandicoots for the last 3 years. We have 8 animals in total that we're releasing, and they're a combination of males and females of various ages, mostly 1 or 2 year olds. So they can live in captivity for up to 6 years, but generally in the wild for about 3 or 4 years. They will be released into a contained paddock at Mount Rothwell, and we'll build up the numbers to do another larger broad scale release at another site which is twice the size of Mount Rothwell.
अब प्राकृतिक दुनिया को लेकर प्रचार की तो कोई कमी नहीं है। इसके विलुप्त होने का विरोध ऑस्ट्रेलिया और विदेशों दोनों में ही केंद्र स्तर पर हो रहा है। ग्रीन्स के सांसद एडम ब्रांट ने मई में SBS न्यूज को बताया कि भविष्य के बारे में चिंतित लोगों की आवाज को और भी बल मिलेगा।
We are going to see people taking action and civil disobedience growing on a scale that we haven't seen before. This is literally a matter of life or death. This is about whether we are able to preserve our way of life as we know it.
एक व्यक्ति जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अगर किसी दूसरे से सबसे अधिक काम किया है तो वो है प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो। बीबीसी के नेचुरल हिस्ट्री यूनिट में उन्हें और उनके सहयोगियों को प्रतिष्ठित चैथम हाउस ट्रस्ट द्वारा उनके काम के महत्व को पहचाना गया और उन्हें एक पुरस्कार दिया गया। सर डेविड एटनबरो टीवी कार्यक्रमों के निर्माण के द्वारा इस दिशा में लोगों को इन खतरों के बारे में जागरूक करते हैं।
We are citizens of the world, and we must recognize that. And international cooperation, which is the subject of this great organization, is of paramount importance. If this international organization considers that what we have done in the Natural History Unit has in some way helped spread an awareness of the problems that face the world, that in some way will convince the population of the world that we all belong to one world, and just the one world belongs to all of us, then this award pleases me more than I can say.
SBS न्यूज के लिए एलन ली की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता परार ने।
आपके विचार हमें बताए। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।